नमस्कार भारत, आज है 25 अगस्त दिन शुक्रवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। रेप मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर सीबीआई अदालत का फैसला आज। पंचकुला में उमड़ी समर्थकों की भीड़।
जो कोर्ट के आसपास का एरिया है वो बिल्कुल ही हमने आउट ऑफ बाउंड कर रखा है।
भारत और नेपाल के बीच 8 समझौतों पर हुए दस्तखत। सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति। बिहार में बाढ़ से 350 से ज्यादा लोगों की मौत। यातायात प्रभावित होने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी।
मुझे पटना जाना है, पटना जो मैं घोड़ासान से 4 घंटे में जा सकता था मुझे 12 घंटे की यात्रा करनी पड़ रही है। और जब मैं रक्सौल स्टेशन आया तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ अब 6 बजे शाम को ट्रेन है जो मुजफ्फरपुर जाएगी।
भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गौशाला बनाने को लेकर छिड़ा विवाद। होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। बलात्कार के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आने वाला है। भारी संख्या में डेरा समर्थकों के चंडीगढ़ पहुंचने को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया है। गुरुवार की रात डेरा प्रमुख ने अपने समर्थकों से वापस घर लौट जाने की अपील की थी, लेकिन समर्थक पंचकुला में डटे हुए हैं। हाईकोर्ट ने समर्थकों को अदालत परिसर से हटाने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के रक्का शहर में अस्थायी संघर्ष विराम की अपील की है ताकि फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। शहर के अंदर करीब 25,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अमेरिका की अगुवाई वाला फौजी गठबंधन रक्का को इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। गठबंधन फौजों ने शहर के आधे से अधिक इलाकों पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि शहर में इस्लामिक स्टेट के 2,000 लड़ाके मौजूद हैं।
The civilian casualties are large, and there seem to be...
नागरिक हताहतों की संख्या बहुत अधिक है और ऐसा लग रहा है कि उनके बच निकलने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कुछ समय के लिए संघर्ष विराम के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके नागरिकों का मानव कवच के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। ये थे सीरिया में मानवीय सहायता कार्यक्रम के मुखिया यौन येगलांग के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के नेता के बीच स्वास्थ्य बजट एवं कर्ज को लेकर मतभेदों की खबरों के बीच व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता सारा हकबी सैंडर्स ने कहा है कि अगर नीतिगत मतभेद होता है तब भी दोनों का लक्ष्य एक है। सीनेट में बहुमत के नेता मिच मैकोनेल और सीनेट में उनके सहयोगी पॉल रियान की ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की थी।
Look, I think the relationships are fine. Certainly there are going to be some policy differences, but there are also a lot of shared...
देखिए, मैं समझती हूं कि दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ नीतियों को लेकर दोनों के बीच मतभेद हों, लेकिन कुछ साझा लक्ष्य भी हैं और हम इसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये थे व्हाइट हाउस प्रवक्ता हकबी सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। क्यूबा की राजधानी हवाना में अमरीकी दूतावास के 16 कर्मचारी बीमार होने के बाद इलाज के लिए अमरीका लौट गए हैं। अमरीकी विदेश विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए इसके पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। अधिकांश कर्मचारियों को सुनने की समस्या पैदा हो गई थी। क्यूबा ने इसमें अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है और अपनी तरफ से जाँच के आदेश दिए हैं। अमरीका के गृहमंत्री ने देश के संरक्षित इलाकों की सीमा को कम करने का सुझाव दिया है ताकि उन्हें विकास के लिए खोला जा सके। गृहमंत्री रियान जिंकी ने कहा कि संघीय सरकार की ओर से जमीन और पानी से घिरे कुछ संरक्षित इलाकों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर कंपनियों को स्थानीय कर्मचारियों के बजाय बाहर से सस्ते कर्मचारियों को लाने से रोका नहीं गया तो यूरोपीय संघ के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनियां इस तरह स्थानीय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन देने से खुद को बचा रही हैं। उन्होंने ब्रेक्सिट के पीछे इसी को कारण बताया। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहुंचे अमरीकी रक्षा मंत्री ने रूस पर बलपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अतिक्रमण का आरोप लगाया है। जिम मैटिस ने कहा है कि मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय संधियों की परवाह नहीं कर रहा है, जबकि उसने खुद इस पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस अपने रवैये में सुधार नहीं लाता है तो उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जारी रहेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने समाचारों में सुना, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर लगे बलात्कार के आरोपों के मामले में आज पंचकुला की सीबीआई अदालत में फैसला आने वाला है। डेरा समर्थकों की तरफ से प्रदर्शनों की आशंका में पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और धारा 144 लागू है। सुरक्षा के इंतजामों के बारे में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बी एस संधू ने कहा,
इस समय तक स्थिति जो है वो पूरी तरह कंट्रोल में है। पुलिस फोर्स, हरियाणा पुलिस और सेंट्रल की आर्म पुलिस फोर्सेस वो यहाँ पहुँच चुकी हैं, उन्होंने पोजीशन ली हुई है। और जो कोर्ट के आसपास का एरिया है वो बिल्कुल ही हमने आउट ऑफ बाउंड कर रखा है।
ये थे हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बी एस संधु। उधर कल देर रात डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने भी एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से लौट जाने की अपील की। उनके संदेश की जानकारी उनके वकील एस के गर्ग ने दी।
बिल्कुल शांति बनाए रखे, और मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैं कोर्ट में आऊंगा। मेरे को पीठ में दर्द है, फिर भी मैं कोर्ट में आऊंगा क्योंकि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ।
आपको बता दें कि साल 2002 के मई महीने में डेरा सच्चा सौदा की एक कथित साध्वी ने डेरा प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को एक गुमनाम चिट्ठी भेजी थी। इसकी एक प्रति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई थी। उसी साल सितंबर महीने में हाईकोर्ट ने साध्वी के यौन शोषण मामले में गुमनाम पत्र का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जाँच के आदेश दिए थे। आज उसी सीबीआई अदालत का फैसला आना है, जिसे लेकर गुरमीत राम रहीम के समर्थक वहां जमा हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन के पास। रविंदर, ये बताइए कि रात भर पुलिस बाबा के समर्थकों को पंचकुला से हटाने में लगी रही, अभी क्या हालात हैं?
देखिए, 3 बजे तक वहां पे समर्थक हटा नहीं पाए थे, और जब पंजाब हरियाणा पुलिस ने फिर क्विक रिएक्शन टीम, जो भारतीय सेना के जवान है, QRT जिन्हें बोलते हैं, उनको बुला लिया गया था, और जितने मीडिया कर्मी थे उनको वहां से वापस भेज दिया गया, और बसें वगैरह वहां पे लगाई गई थी ताकि उनके समर्थकों को वहां से हटाया जाए, लेकिन वो लौटने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद बाबा का संदेश, बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह का संदेश था कि वो वहां से हट जाएं और शांति बनाए रखें, लेकिन अब हम बॉर्डर पर खड़े हैं पंचकुला के, और जो कोर्ट कम्प्लेक्स है वो तो खाली है, लेकिन उसके आसपास अभी भी कुछ लोग हैं, और कर्फ्यू डिक्लेयर तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। अब 3:30 बजे के करीब गुरमीत राम रहीम सिंह का कहना है कि वो वहां पहुंचेंगे, और जो उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बातचीत, उस पर सुनवाई होगी। धाराएं जो लगाई गई हैं वो 376 और 506 के तहत कार्रवाई होगी।
रविंदर, कितने बजे तक अदालत का फैसला आने की उम्मीद है, और अगर फैसला बाबा के खिलाफ जाता है तो किस तरह की चुनौती हो सकती है पुलिस के सामने?
फैसला 2:30 बजे गुरमीत राम रहीम सिंह ने वहां पहुंचना है, उसके बाद सुनवाई होगी, और अंदाजा 3:30-4 बजे के करीब फैसला आना चाहिए। और जो अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है, जो कि माहिर बताते हैं कि 2 से 7 साल की सजा भी हो सकती है, एक्विट हो सकते हैं, अगर उसमें आता है तो अभी तक की आने से पहले तक की सिचुएशन ये थी कि 144 धारा लगने के बावजूद लाखों लोग वहां इकट्ठे हो चुके थे, और जब हाई कोर्ट ने पंजाब हरियाणा पुलिस की, माफ करना, खिंचाई की, तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई तो उनको हटाने की कयावत शुरू कर रही है और अपील कर रही है गुरमीत राम रहीम से और लोगों से वहां से हटने की। अगर खिलाफ आता है तो हाँ, ये क्योंकि इससे पहले भी 1-2 बार सिखों के और गुरमीत राम रहीम के समर्थकों के बीच दंगे हुए थे, हालांकि इस बार सिखों का तो कुछ नहीं है, लेकिन गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पंजाब बॉर्डर कंप्लीटली सील है, हरियाणा की तरफ चंडीगढ़ की तरफ से भी पुलिस और आर्मी के जवान वहां पे खड़े हैं, तो सिचुएशन तो पंजाब पुलिस और इन लोगों ने संभालनी है। क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा।
पंचकुला ही नहीं, सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में भी राम रहीम के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रभु दयाल के पास सिरसा। प्रभु दयाल, ये बताइए, फैसले को लेकर वहां डेरा मुख्यालय में क्या कुछ चल रहा है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं?
सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात की गई है। मैं अभी बाजे का मोड़ पे हूँ जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, यहाँ पे पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि बाबा 8:30 बजे बाई रोड निकलने वाले हैं। ये भी पता चला है कि जो रात कर्फ्यू लगने के बाद जो लोग सड़कों पे थे उनको हटा दिया गया है।
जी
जी,
आपकी कुछ डेरा समर्थकों से बात हुई होगी, उनका क्या कहना है?
डेरा समर्थकों का ये कहना है कि जब तक हम गुरु के दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम नहीं जाएंगे। डेरे के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। जो सूत्रों से मिली जानकारी है डेरा के अंदर 50,000 के लोग इकट्ठा हैं।
जी प्रभु दयाल और रविंदर सिंह रॉबिन, आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाम के कार्यक्रम में आपके पास दोबारा लौटेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने नेपाल को बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए मदद का वादा किया है। इससे पहले चीन के उप प्रधानमंत्री ने नेपाल का दौरा किया था और भारत से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए करोड़ों डॉलर की सहायता की घोषणा की थी। बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता महेश आचार्य से हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने बात की और जानना चाहा कि बाढ़ को लेकर मदद की पेशकश को नेपाल किस तरह देखता है।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने जब पत्रकार सम्मेलन को संबोधन किया तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में जो डुबान की समस्या है उसको संबोधन करने के लिए कुछ दीर्घकालीन उपाय की खोजी करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यह कहा,
हम इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ नियंत्रण पर कोऑर्डिनेशन और कंसल्टेशन को और मजबूत किया जाए और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर सोचा जाए।
लेकिन नेपाल में ये धारणा है कि आम रूप में कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर में जो इंडियन साइड ने बंड बनाया है उसी के कारण डुबान हुआ है, ऐसा मानना है कई लोगों का। तो इस हिसाब से वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री भारत जा रहे हैं तो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए, ऐसा दबाव था। और नेपाल की सरकार ने जब एक कैबिनेट में एजेंडा पेश किया था इंडिया विजिट का, उस वक्त भी कोसी बांध, लक्ष्मणपुर बांध और ये डुबान की समस्या के बारे में बात करने की बात हुई थी। लेकिन अगर आप आधिकारिक दस्तावेज को देखें तो उसके बारे में उतना ज़्यादा उल्लेख नहीं है। केवल प्रधानमंत्री मोदी ने वो विषय उल्लेख किया कि इसका दीर्घकालीन समाधान का उपाय खोजना चाहिए।
जी, अब बाढ़ की बात करें तो पिछले दिनों एक चर्चा ये भी थी कि चीन के जो वाइस प्रीमियर आए थे नेपाल, उन्होंने भी जो है ख़ासतौर पर ये जो भारत की सीमा से लगा हुआ नेपाल का हिस्सा था उसके लिए जो है एक बड़ी वित्तीय मदद की घोषणा की थी और उसे लेकर भारत में भी चर्चा थी। नेपाल में किस तरह देखा जाता है?
अब जब बात रही ये जो होड़ के बारे, तो नेपाल का पहले से ये मानना है कि नेपाल एक जटिल भू राजनीतिक अवस्थिति में है, तो नेपाल को दोनों जो विशाल छिमी किए उनको संतुलन में रख के, समुद्री में रख के संबंध आगे बढ़ाना है, क्योंकि छोटा सा मुल्क है और उसको अगर बैलेंस नहीं करे तो उसको ही हार्म होगा, ऐसा मानना है। तो जैसे कि जो डोकलाम इश्यू है उसको लेकर भी नेपाल में काफ़ी चर्चा हुई है और नेपाल के परराष्ट्र मंत्री, विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि नेपाल इस मामले में तटस्थ रहेगा, न्यूट्रल रहेगा।
ये थे बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता महेश आचार्य। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने कल माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत के इस फैसले की व्याख्या केंद्र सरकार के लिए झटके के तौर पर की जा रही है। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अदालत ने केंद्र सरकार की कही बात ही दोहराई है। भारत सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने पहले कहा था कि संविधान में निजता का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कोई सामान्य अधिकार। बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट की वकील अवनी बंसल से फेसबुक लाइव में निजता के अधिकार के कई पहलुओं पर बात की।
गोपनीयता का अधिकार या निजता का अधिकार एक जनतंत्र में एक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि संविधान में स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा नहीं था कि गोपनीयता का अधिकार है, लेकिन यदि हम देखें आर्टिकल 21 भारत के पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को जीने का और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। लिबर्टी मतलब आजादी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजादी को तब तक जो है पूर्ण तरीके से नहीं जी सकता जब तक उसके साथ गोपनीयता का अधिकार नहीं हो। कुछ उदाहरण के तौर पे हम इस बात को समझें। देखिए, पहली बार जब जजमेंट आया था तो बात कोर्ट के सामने यह थी कि क्या पुलिस बिना वारंट के रात के समय किसी भी व्यक्ति के घर में घुस सकती है?
नहीं घुस सकती।
क्या घुस सकती है, ये लोगों को सोचना चाहिए। ये गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, मेरे से संबंधित जो मेरे कागज हैं, जो मेरे घर में रखे हुए हैं, क्या पुलिस या कोई भी सरकारी अफसर किसी भी समय आकर कभी भी मेरे कागजों को, मेरी प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकता है?
अगर सरकार के पास ये अधिकार होगा कि आपकी निजता को वो हासिल कर सकती है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास जा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना ये रुख रखा था कि राइट टू प्राइवेसी अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अब सरकार कह रही है कि भाई हमने कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेसी में प्रॉब्लम है, आपकी गोपनीयता का अधिकार है लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। देखिए, पहली बात, भारत में हमारे संविधान के अनुसार कोई भी अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। मतलब हर अधिकार के साथ कुछ कंडीशन डाली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहते हैं कि भाई मुझे बोलने का अधिकार है लेकिन यदि मैं कोई ऐसा स्पीच देती हूँ,
कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है,
भाषण देती हूँ कि जिससे लोग जो हैं वो लड़ाई पे आतुर हो जाते हैं, तो वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में मेरी बात को रोका जा सकता है। तो कोई भी अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है।
यानी जीने का अधिकार भी उसमें शामिल है क्योंकि फांसी की सजा सरकार इस मुल्क में देती है, जुडिशरी देती है।
बिल्कुल। तो अब जो सरकार कह रही है कि हम तो एब्सोल्यूट राइट की बात कर रहे थे, वो एक तरीके से मेरे हिसाब से गलत है। अब दूसरी बात यह आती है कि फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है गोपनीयता के अधिकार को, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उसका कारण बड़ा ही लीगल सा कारण है। देखिए, यदि गोपनीयता का अधिकार कोई और अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो सरकार बड़ी आसानी से उस अधिकार के साथ हस्तक्षेप कर सकती है। अब जबकि इस जजमेंट के बाद तो आपकी गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने के पहले सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वो यह हस्तक्षेप पहली बात किसी कानून के अधीन ही कर सकती है।
ये थी सुप्रीम कोर्ट में वकील अवनी बंसल, और उनसे बात कर रहे थे बीबीसी हिंदी रेडियो के संपादक राजेश जोशी।
बीबीसी इंडिया बोल।
निजता की रक्षा कितनी जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है, लेकिन आधार कार्ड के लिए पुतलियों की फोटो और उंगलियों के निशान चाहिए। आपके लिए निजता का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आधार कार्ड? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 26 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार में बाढ़ के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। 1.5 करोड़ लोग इस आपदा की मार झेल रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका में अब तक 350 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और कोशी नदी के जल ग्रहण वाले क्षेत्रों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पूर्वी चंपारण के सुगौली में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ राहत की समीक्षा की। बाढ़ के कारण राज्य में 200 से अधिक सड़कें टूट गई हैं और कई रेल लाइनें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जाने वाली
75-25 ट्रेनें या तो रद्द है या फिर लेट चल रही है। स्टेशनों और बस स्टैंडों पर सैकड़ों लोग गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनकी गाड़ियां नहीं मिल पा रही। चंपारण इलाके में लाखों की आबादी आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशान है। रक्सौल स्टेशन पर मेरी मुलाकात हुई रामपुकार सिन्हा से। वे एनडीए गठबंधन की पार्टी रालोसपा की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। रामपुकार सिन्हा ने बीबीसी को बताया,
मुझे पटना जाना है। पटना जो मैं घोड़ासान से 4 घंटे में जा सकता था, मुझे 12 घंटे की यात्रा करनी पड़ी। और जब मैं रक्सौल स्टेशन आया तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ अब 6 बजे शाम को ट्रेन है जो मुजफ्फरपुर जाएगी। अब देखना यह है कि हमारे क्षेत्र की जनता, खासकर चंपारण और उत्तर बिहार की, जो भी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मदरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सरसा, सभी क्षेत्र के लोग तमाम बाढ़ के चपेट में आएगा।
यहीं पर मेरी मुलाकात हुई अमुआ गांव के रामावतार शाह से। वे आदापुर में बाढ़ से घिरे अपने गाँव से पैदल चलकर पहले तो आदापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, फिर रक्सौल आए। अब उन्हें समस्तीपुर जाना है लेकिन उनकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है। रामावतार शाह ने मुझे बताया,
अब तो गाड़ी अब हम लोग का मिलेगा तब ना, कब बजे मिलेगा मिलेगा, 5 बजे मिलेगा कि 6 बजे मिलेगा। हम लोग तो वहाँ से चले हैं, 2 बजे गाड़ी यहाँ है ना रसकौल में, तो हम वहाँ से लोग चल दिए हैं। तब यहाँ बोलता है से बोलो 5 बजे गाड़ी है।
नेपाल के कलिया की रहने वाली पिंकी देवी को कुंडवा चैनपुर तक जाना है। वे 9 बजे सुबह अपने घर से चली थी, कब पहुँचेंगी पता नहीं। पिंकी देवी ने बीबीसी को बताया,
पैसे लिया समस्या गाड़ी के, चैनपुर 7-8 बजे।
क्यों है ऐसी हालत? मैंने रक्सौल स्टेशन के अधीक्षक पीएनपी श्रीवास्तव से यह सवाल पूछा। उन्होंने बीबीसी को बताया,
बाढ़ के कारण जो है अभी आपका इधर आपका कुड़वा चैनपुर के तरफ 2 पैसेंजर ट्रेन चल रही है, एक सुबह एक शाम। हाँ, इधर से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 1:30:22 चल रही है, 1:52:01 चल रही है, 1:55:26 चल रही है। नरकटियागंज सुगौली से नरकटियागंज के लिए हमारे यहाँ से कोई गाड़ी नहीं चल रही है, ये अभी डिस्टर्ब है।
दरअसल बाढ़ ने आवागमन को दुरूह बना दिया है। सरकार को चाहिए कि वह टूट चुकी सड़कों, पुल पुलियों और रेलवे ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण कराकर उनकी मरम्मत कराए, क्योंकि हवाई सर्वेक्षणों से भले ही अच्छी सेल्फी बन जाए या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रेस रिलीज के लिए एक बेहतर तस्वीरें, लेकिन धरातल पर कष्ट झेल रहे लोगों की पीड़ा का अंदाजा तो धरातल पर आकर ही लगेगा। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए चंपारण में।
भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपने नए परिसर में गौशाला खोलने जा रहा है। विश्वविद्यालय के इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय के कई छात्रों का मानना है कि प्रबंधन को गौशाला खोलने की बजाय मूलभूत संसाधनों को बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। सुनिए भोपाल से शुरय नियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय शहर के बाहर बिशनखेड़ी में बन रहे 50 एकड़ के नए कैंपस में गौशाला के लिए भी स्थान बना रहा है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस गौशाला को खोलने का फैसला 4 साल पहले महापरिषद और प्रबंधन समिति की बैठक में हो गया था। विश्वविद्यालय का कहना है कि इसका मकसद छात्रों को दूध, दही और मक्खन उपलब्ध कराना है, वहीं गोबर गैस प्लांट के जरिए हॉस्टल में गैस की सप्लाई भी की जानी है। विश्वविद्यालय के कुलपति ब्रिज किशोर कुटियाला का ताल्लुक आरएसएस से रहा है, लिहाजा इस फैसले को उसी नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन कुलपति इस बात से इनकार कर रहे हैं।
अब आरएसएस का बैकग्राउंड होने का तो मुझे गर्व है, ठीक है ना, परंतु ये गौशाला आरएसएस के कारण चलाई जा रही है, ये तो ऐसे ही होगा ना कि गौ की आरएसएस की है, केवल गौ तो सारे भारत की है और सारे विश्व की है।
वहीं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के छात्र दुर्गेश गुप्ता कहते हैं,
सारी चीजें जुगाड़ से काम कर रही हैं। अब आप यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर देखकर, बिल्डिंग देख के आपको अनुमान लगा ही सकते हैं। गौशाला के लिए इनके लिए पैसा है, यूनिवर्सिटी रेनोवेट कराने के लिए पैसा नहीं है, और क्लासरूम में बैठक व्यवस्था क्या है, कुछ भी ऐसा ही है, सब चल रहा है काम जुगाड़ से।
वहीं कुछ छात्रों ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा,
अगर ये शिक्षा का मंदिर है तो यहाँ पे शिक्षा मिलनी चाहिए ज़्यादा अच्छे स्तर की, और कहीं ना कहीं गौशाला खोलने से पहले चौमुखी विकास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भारत की जिम्मेदारी युवाओं के ही कंधे पे है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इस निर्णय से सहमत ना हो, कुछ छात्र और छात्राएं इसे एक अच्छा फैसला बता रहे हैं। सुलक्षणा पटेल उन्हीं में से एक हैं।
अपनी तरफ से कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है इसके लिए, ना ही किसी को शोषित किया जा रहा है। अपनी प्रॉपर्टी से अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको इसका समर्थन करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है।
वहीं मध्य प्रदेश मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बादल सरोज ने एक बयान में सवाल किया है कि भोपाल के पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गौशाला खोलने का प्रस्ताव सामने आया है, क्या ऐसा करके संस्थान खोजी पत्रकारिता की क्षमता बढ़ाने के लिए गोबर और गौमूत्र पर शोध प्रबंधन लिखवाएगी? इससे पहले भी विश्वविद्यालय दूसरे कई मामलों को लेकर विवादों में रहा है। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संदीप राय जी। संदीप, क्या कहते हैं अखबार?
जी अमरीश, आज के लगभग सारे अखबारों में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर के जो फैसला आने वाला है उसकी खबरें हैं, और ख़ासकर जो सबसे बड़ा बैनर लोगों ने ताना है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेसी को लेकर के अपना फैसला सुनाया है। लेकिन चलिए हम आगे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल KVS सिंह ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ चल रही सभी जांच को बंद करने का आदेश दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्र के मारे जाने की खबर मिलने के बाद वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मंगलवार को एक मुठभेड़ में चरमपंथी की मौत हो गई थी, बाद में पता चला कि वो छात्र है जो 21 अगस्त से ही लापता चल रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक अन्य खबर है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के भर्ती बोर्ड व्यापम के तहत कांस्टेबल पदों पर हो रहे टेस्ट में एक छात्र को इसलिए टेस्ट नहीं देने दिया गया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था। हिंदी अखबार अमर उजाला की एक खबर के अनुसार SC ST एक्ट के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट के सामने सरेंडर किया है, उन्हें जमानत भी मिल गई है। ये मामला 2007 का है जब उन पर एक दलित लिपिक से मारपीट का आरोप लगा हुआ था।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप राय अखबारों की समीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत को आमतौर पर आलोचना का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन पिछले हफ्ते हुबली में उनसे कठोर शब्दों में कहा गया कि उन्हें लिंगायत समुदाय के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़े सार्वजनिक सम्मेलन में मोहन भागवत से ये कहने वाली एक महिला थी जो कर्नाटक के एक लिंगायत मठ की प्रमुख हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
RSS के सरसंचालक मोहन भागवत की आलोचना करने से राजनेता भी थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन जगत गुरु माता महादेवी को किसी तरह की संकोच नहीं। RSS प्रमुख भागवत ने पिछले हफ्ते हुबली में कहा था कि लिंगायत मठाधिपतियों को ये समझना होगा कि लिंगायत समुदाय हिंदू समाज के बाहर नहीं जा सकता है। भागवत ने यह बयान शायद इसलिए दिया था क्योंकि कांग्रेस सरकार कथित तौर पर उस सोच को हवा दे रही है कि लिंगायत समाज को संवैधानिक रूप से धार्मिक दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए वो केंद्र सरकार से सिफारिश करने के लिए भी तैयार है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का मकसद लिंगायत समुदाय के वोट को बांटने का है ताकि बीजेपी नेता BS येडियुरप्पा को लिंगायत समाज से समर्थन ना मिले या कम समर्थन मिले। लेकिन माते महादेवी इस मुद्दे को अलग नजरे से देखती हैं। उन्होंने BBC को बताया,
श्री मोहन भागवत
भागवत जी ने कहा कि लिंगायत समाज को हिंदू धर्म के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने भागवत जी को कहा कि लिंगायत हिंदू नहीं है, वो एक अलग धर्म है जिसे संवैधानिक मान्यता दिलवाना हमारी मांग है। ये थे माते महादेवी के शब्द। माते महादेवी ग्रेजुएट होने पर 20 साल की उम्र में लिंगानंद स्वामी के मठ में शामिल हुई थी। लिंगायत समुदाय में पुरुष और स्त्री के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। उनमें ऐसा क्या है जो उन्होंने दूसरे लिंगायत जगत गुरुओं से अलग करती हैं? इस बारे में लिंगायतों के विशेषज्ञ और लेखक रमजान दरगाह कहते हैं,
लिंगायत समाज समाज
माते महादेवी बसवेश्वरा की शिक्षाओं को एक आधुनिक नजरे से देखती हैं। दूसरे मठों के धर्म गुरु या जगत गुरु की राय परंपरागत है। ये थे रमजान दरगाह के शब्द। लिंगायत समुदाय में 2-3 महिला मठाधिपति हैं, लेकिन वो बहुत कम उम्र की हैं। माते महादेवी की अनुयायी न सिर्फ कर्नाटका के उत्तरी जिलों में है बल्कि पड़ोस के महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हैं। अपने प्रभाव की वजह से ही वो शायद अब लिंगायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के संघर्ष को अब किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहती हैं। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब थोड़ी चर्चा क्रिकेट की। पल्लिकल में खेले गए दूसरे वनडे में बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 236 रन बनाए थे, लेकिन भारत के सामने डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार 44.2 ओवर में जीत के लिए 231 रन का संशोधित लक्ष्य था। श्रीलंकाई गेंदबाज अकीला धनंजय की शानदार बॉलिंग के सामने भारतीय बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौटते जा रहे थे और एक समय 131 रन पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मुश्किल लक्ष्य को आसान बना दिया। इस तरह भारत को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त मिल गई है। अकीला धनंजय को 6 विकेट वाली शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तीसरा वनडे 27 अगस्त को पल्लिकल में ही खेला जाएगा। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बलात्कार के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को लेकर आज CBI कोर्ट का फैसला आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के रक्का शहर में अस्थायी संघर्ष विराम की अपील की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के नेता के बीच मतभेद की खबरों के बीच व्हाइट हाउस ने सफाई दी है। क्यूबा की राजधानी हवाना में अमरीकी दूतावास के 16 कर्मचारी बीमार होने के बाद इलाज के लिए अमरीका लौट गए हैं। अमरीका के गृह मंत्री ने देश के संरक्षित इलाकों की सीमा को कम करने का सुझाव दिया है ताकि उन्हें विकास के लिए खोला जा सके। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि अगर कंपनियों को सस्ते कर्मचारियों को लाने से रोका नहीं गया तो यूरोपीय संघ के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। BBC समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की हर पल बदलती खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।